जहाँ विशाल गहरे सागर का तेजोमय सूरज से मिलाप होता है, जहाँ छलकता पानी सूरज की रोशनी को अपने अंदर समेटता है, उसी अरब सागर के किनारे खड़ा है शानदार रंगारंग शहर मुंबई। समंदर की बढ़ती हुई लहरों की तरह उमड़ती रहती है लोगों की भीड़। यहाँ की मजबूत और बुलंद इमारतों की तरह ही मजबूत और बुलंद इरादे लेकर लोग यहाँ आते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, इसी में घुल मिल जाते हैं। दरअसल यहाँ की जिंदगी को चकाचौंध करती है सिनेमा की दुनिया, जो कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
एक पुराना कुआं कहीं देखा था मैंने।
मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी सीता।
शासन देने से पहले ये भी तो पूछो इसने करतूत क्या की है।
कुछ भी किया होगा, चोरी की होगी, डाका डाला होगा, कतल किया होगा।
लगता है आपको अच्छा नहीं लगा।
मुंबई एक जादुई शहर है। यहाँ लोग रातों रात अमीर से गरीब और गरीब से अमीर होते देखे जाते हैं। यहाँ जिन लोगों के हौसले बुलंद और मजबूत होते हैं उनके लिए तकदीर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, और कामयाबी बिना दस्तक दिए घर में दाखिल हो जाती है। ये मकान उस शेर दिल इंसान का है जिसके हाथों की पकड़ से उसके दिलो दिमाग की चुस्ती का अंदाजा होता है। इस अजीम शख्स का नाम है अशोक कुमार गांगुली, यानी अशोक कुमार जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं दादा मुनि।
मैं खंडवा का रहने वाला हूँ। हमारे फादर, ग्रैंडफादर, मेरे अंकल, अंकल के लड़के सब वकील थे। तो घर में खंडवे में करीब 5 वकील थे जो काफी दूर के प्रैक्टिस करते थे, और खंडवे की पॉपुलेशन बहुत कम है, 25,000 की है उस वक्त, अब तो लाखों हो गए। तो हमारे फादर ने मुझे कहा कि तुम जब मैं कॉलेज पास कर गया, ग्रेजुएट हो गया, तो नहीं तो लॉ करो। तो लॉ उन्होंने कलकत्ते से किया था, मुझे भी कलकत्ता भेजा। कलकत्ते में प्रिंसिपल थे उस वक्त हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट, क्या नाम है उनका भूल रहा हूँ मैं, हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट थे वो, मेरे पत्नी के रिलेशन थे, वो प्रिंसिपल थे वहाँ के। बाद में कश्मीर में उनका हार्ट अटैक हुआ, वहाँ मारे गए, मर गए। तो उनके पास गया मैं, मैंने कहा देखिए बात ये है, आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन लॉ बिकॉज देर आर 5 लॉयर्स इन द सेम हाउस, मैं क्या करूँ आप बोलिए, मैं तुमको काम इंटरेस्ट है। मैंने कहा मैं चाहता हूँ फिल्म में डायरेक्टर होना या प्रोड्यूसर होना या कुछ टेक्निकल लाइन। बोले एक काम करो, तुम मॉर्निंग का क्लास ज्वाइन करो 7 से 8 तक, लॉ कॉलेज का 1 घंटे का क्लास होता था, क्या 7 से 8 तक ज्वाइन करो, 7 से ज्वाइन करने के बाद तुम चले जाओ, फिर देखा करो पिक्चर सब जो तुमको सोचना है लिखो। ये मेरी शुरुआत हुई फिल्म की। इस वक्त क्या हुआ, हमारे जो ब्रदर इन लॉ थे मुखर्जी, शशधर मुखर्जी, वो MSc पास करके बम्बई आए। बम्बई आके उनने भी सोचा कि क्या करें, प्रोफेसर होना ना सर, उन्होंने कहा हम फिल्म में काम करेंगे। तो फिल्म में वो साउंड इंजीनियर हुए, और उनने मुझे चिट्ठी लिखी कि अगर सुना कि तुम वकालत करना नहीं चाहते हो, तो अगर फिल्म में काम करना है तो एक काम करो, हिमांशु राय हैं जर्मनी से, उनका इंटरव्यू दे दो उनको, और वो चाहते हैं कि अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग आके ज्वाइन करें। मैंने कहा ठीक है चलो आज चले आते हैं। 33 रुपये मुझे लगे टिकट खंडवे कलकत्ते से बम्बई आने में 3rd क्लास में। तो वो टिकट मैंने आए, आके उनसे मिले, उनने कहा कि चलो इंट्रोड्यूस करा दें। तो मैं हिमांशु से इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने देखा कहा तुम एक्टिंग अच्छा करो। मैंने कहा नहीं एक्टिंग के लिए मैं आया नहीं हूँ। तो क्यों, मैंने देखिए मैं एक्टिंग देख लेता हूँ लोग क्या करते हैं, फिर मैं आपके पास आऊँगा। शाम तक उनके पास रहे, उनका ऑफिस था सब चर्चगेट में। तो वहाँ से मैं जाकर मुखर्जी ने कहा कि चलो ठीक है पिक्चर क्या क्या होता है, इधर उधर देखते रहे देखते रहे देखते रहे। देखने के बाद दूसरे दिन मैंने कहा देखिए हिमांशु राय से कहा कि देखिए एक्टिंग मैं देखा हूँ जो काम करते हैं कुछ कल्चर्ड लोग नहीं हैं, यानी मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि प्रोस्टिट्यूट्स हैं पर नॉट वेरी इतने कल्चर्ड नहीं है, बोलने वाले अच्छे नहीं है, लिखे पढ़े अच्छे नहीं है, और हीरो बनते थे उन्हीं के रिश्तेदार लोग, तो मैं वो तो निकलना चाहता मैं तो ठीक है तुम एक्टिंग मत करो टेक्नीशियन हो जाओ। मैंने कहा थैंक यू, मैं हो गया टेक्नीशियन। टेक्नीशियन क्या, कैमरा, साउंड, एडिटिंग, वो हिमांशु ऐसा काम कराते थे ताकि सब काम करो तुम, जो भी कुछ भी काम करो, एक्टर हो तो भी तुम्हें एडिटिंग करना पड़ेगा, जो भी काम करना है वो हिमांशु ही, वो उनका सब। आज जो जो लोग काम कर रहे हैं दे शुड बी थैंकफुल टू हिमांशु राय, क्योंकि कल्चर्ड पीपल उस वक्त आते नहीं थे, लिखे पढ़े आदमी आते नहीं थे उस वक्त। तो जब देखा उनने, मैं कैमरा में काम करने लगा वीर सिंह के अंडर, जिसने महल उतारा मेरे लिए बाद में। मैं वीर सिंह लोग जर्मन टेक्निक बहुत अच्छा था, टेक्निक अच्छा माने मतलब 5 बजे उठते थे और बिल्कुल टाइम टू टाइम काम उनका बराबर होता था, वेरी रेगुलर पीपल और बहुत ही सॉलिड काम करते थे, दूसरों पर माफिक नहीं थे। तो मैं काम करने लगा वहाँ उनके साथ कैमरा में, झगड़ा भी हो गया उसके साथ क्योंकि मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करने लगा काम में, इंटरफेयर में कैमरा ले लूँ और कुछ करूँ, लोग चिढ़ गए, इसके बोले इसको और कहीं डालो, लेबॉरेटरी में डाल दिया मुझे लेबॉरेटरी। मैंने लेबॉरेटरी उस वक्त ऑटोमेटिक लेबॉरेटरी शुरू हो गया था, वहाँ डाल दिया, वहाँ भी काम किया, वो भी जर्मन टेक्नीशियन था वहाँ उसका। उसके बाद एक दिन मैं डब्बे लेके जा रहा था, पैंट मेरा भीगा हुआ, हाथ पे सराशिर पड़ा हुआ, हिमांशु राय के बोले इधर। मैंने कहा, तब डब्बे लिए खड़ा था, बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि ये सब एडिटिंग कर रहा। बोले एक काम है तुमसे, हमारा जो हीरो है नजमुल हुसैन वो छोड़ के चला गया, तो हमारा स्क्रिप्ट तैयार है, मैं समझ में नहीं आया क्या बोलना चाहते हो, तो हीरो है नहीं इसलिए मैं चाहता हूँ तुम हीरो का काम करो। मैं तो एक सिंगल घबरा गया, मैंने कहा क्या करे, एक तो मैं दुबला सा था और फिर हीरो का काम तो करूँगा ही नहीं। मैंने कहा छोटे मोटे रोल है तो कर लेता, तो मैंने कहा मेरे से होगा नहीं। बोले होगा नहीं, हम लोग दैट यू लीव इट टू अस, हम लोग को छोड़ दो, हम लोग करा लेंगे।
मूरख प्यार 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 तेरा कौन है?
कस्तूरी मेरी बात मानो, चलो कहीं भाग चलो।
नहीं नहीं प्रताप, ये मुझसे ना होगा, भाग ने हमारा साथ नहीं बदा, तुम वामन हो, मैं अछूत।
अब अछूत करने में काम तो करता था मैं, लेकिन डायलॉग बोलते नहीं बने। इवन आप देखेंगे मैं डायलॉग बोलना सीखना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं अछूत करने ऐसी चल गई, उसके बाद जीवन में ऐसी चल गई। मुझे एक बात याद है, इस वक्त इम्प्रूव होने के पहले जब मैंने पहला शॉट किया था जीवन नैया में, इतना नर्वस था मैं कि हमको विंडो से उछल के आना था, देविका रानी हीरोइन थी और मसी हीरो था, इन दोनों को अलग करना था, उन्होंने डायलॉग बोले थे मैं अलग करना था बस। तो हमको ऑस्ट्रेलियन डायरेक्टर ने कहा कि देखिए एज ए क्लैप, यहाँ से प्ले क्लैप होगा, क्लैप पैको साउंड स्टार्ट, कैमरा स्टार्ट एंड देन क्लैप, क्लैप के बाद ये लोग डायलॉग बोलेंगे, तुम 10 गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एकदम उछल के आना, वो डायलॉग सब तो खत्म हो जाएगा, उछल गया ना दोनों को सेपरेट करना, बस यहाँ शॉर्ट है। मैंने कहा ठीक है, नर्वस बॉडी नर्वस, ऐसा ही नर्वस क्या। तो उन्होंने शुरू हो गया, कैमरा स्टार्ट, सुन रहा हूँ मैं, विंडो को बैठा हुआ, साउंड स्टार्ट, शूट जो किया मैं विंडो से ऊपर उछला, उछल के उन दोनों के ऊपर जाके गिरा, और उस वक्त तो उम्र कम थी सब, यहाँ से 8 फीट उछल के दोनों के ऊपर गिरा, तो देविका रानी उधर फेंका गई और जो विलन था इधर फेंका गया, और मैं अकेला खड़ा हूँ। कट का सुनने का कहीं डिल काउंटेन, मैंने कहा फॉरगॉट मैं सर, डू इट अगेन। फिर क्या हुआ, तो वो जो विलन था हो 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 कर रहा था बैठ बैठ, फिर क्या हुआ, वो पैसे रहने उसका, डॉक्टर आया, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर बुलाया, उसका जो घुटने का जो हड्डी है ना फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया का मतलब अब वो चल ही नहीं सकता। मैंने कहा चलो 4 महीने की छुट्टी हो गई अब कुछ। और अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो 3-4 पिक्चर के बाद झूला आया, झूला में डायलॉग मैंने अच्छा बोला, एक्टिंग उतनी अच्छी नहीं हुई।
नमस्ते।
नमस्ते।
माफ कीजिए, ये गाना आपने कहा सुना?
जी, कल रात एक भिखारी इधर से गाता हुआ जा रहा था।
भिखारी?
जी हाँ। क्यों, आप हंसे क्यों?
यूं ही। आपको गाना पसंद है?
जी हाँ बहुत।
शुक्रिया। देखिए मेरी चिट्ठियाँ दे दीजिए, लाइए।
देखो कह दूंगे, हाँ हाँ देखो कह दूंगे, तुम्हारे मन के बतिया तुमने चोरे चोरे भेजे हमें पतिया, तुमने चोरे चोरे भेजे हमें पतिया। देखो कह दूंगे, हाँ हाँ देखो कह दूंगे, तुम्हारे मन के बतिया।
उसके बाद किस्मत आया, किस्मत में डायलॉग भी बेटर आया, एक्टिंग भी बेटर आया, लेकिन वो क्लास नहीं आया।
तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया।
क्लास आया मेरा, समझ आई मुझे, संग्राम में, संग्राम में मैं बिल्कुल समझ गया कि क्या करना।
मैं तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, इसलिए शादी करके मुझे दासी बनाना चाहती हूँ। तुमने मुझे हमेशा धोखा दिया, तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया, तुमने अपने पिता की ममता डुबाई और अपने आप को।
कांता, कांता, यकीन करो मैं तुम्हारे बाबूजी के सामने हमेशा ईमानदार रहा हूँ। इसी ख्याल से कानून तोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम अपने और मेरे प्रेम की इज्जत करके मेरे साथ चलोगे।
अब तुम किस मुझे प्रेम की इज्जत कर रहा करते हो?
कांता, तुम मेरी थी, मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगे।
आप देखेंगे बहुत थोड़े गाने मैंने गाए हैं फिल्म में, आप ये नोटिस करके देखिए। लोग भट से गाने गाते, ऑफ कोर्स गाने से पॉपुलैरिटी बढ़ती फिल्म की, गाने से ही पॉपुलर होता है।
कैसे मैंने दैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने दैन बिताई, एक पल जैसे एक युग बीता, एक पल जैसे एक युग बीता, युग बीते मोहिनी नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने दैन बिताई।
महल के जो गाने थे उसके लिए मैंने कहा चितलकर से, चितलकर का रामचंद्र चितलकर, मैंने कहा कोई गाना अच्छा चाहिए, कोई लड़की अच्छी चाहिए। तो मैंने कहा मैं एक लड़की जानता हूँ, लता मंगेशकर करके, छोटी लड़की 12-13 बरस की, गाती बहुत अच्छा, ले आओ। मैंने कहा लो, दोनों बहनें आई, आके गाना गाया। मैंने कहा ठीक कर लो, अच्छा आएगा आने वाला, लेट फेमस लेजेंडरी सॉन्ग आएगा आने वाला। वो ठीक हुआ, पहले तो रिहर्सल हुआ, फिर मैंने सुना जाके साउंड रूम में, मैंने कहा बहुत अच्छा। तो बोले कि मैं थक गई हूँ, मेरे को चॉकलेट दी। हाँ, मैंने कहा चॉकलेट, लड़की को तो चॉकलेट दिला दिला के गाना गा दी थी। ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा कि एक गाना है, गाना तो नहीं है, इज अ रैप सॉन्ग। मैं तो रहता हूँ, किसको अच्छा लगेगा? बोले ना लगे आप कह दीजिए। मैंने कहा ठीक है चल चल चल। वो रेलवे गाड़ी के है, वो क्या है कि रेलगाड़ी रेलगाड़ी चल 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 नीचे वाले स्टेशन। बोल रुक 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 रुक, कोई गाना नहीं है? मैं
फ्लाय छाती पार कर जाती बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुढ़ा किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान पुल पग डंडी टीले पे झंडी पानी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी बादल धुआं मोट कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे धोबी का घाट मंगल की हाट गांव में मेला भीड़ झमेला टूटी दीवार कट्टू सवार रेलगाड़ी रेलगाड़ी बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक।
और ये सुन के आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने एक तबले का कोई उस्ताद आया था, उसको रिकॉर्ड किया था अपने घर पर और मुझे वो टेप भी उन्होंने भेजा था। नहायत ही अच्छा तबला नवाज कोई था जिसको उन्होंने रिकॉर्ड किया था। उससे उनका शौक का अंदाजा हुआ कि लय और ताल को भी वो कितना सराहते हैं, कितना उस पर लुत्फ लेते हैं उसका।
दादा मुनि ने किस किस किस्म के रोल्स किए हैं, कहाँ से उनकी शुरुआत हुई, किस तरह से उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया, अलग अलग पहलू जिंदगी के देखे, झूला बंधन कंगन वहां से लेकर फिर किस्मत में वही आदमी मॉड हीरो, वहीं से फिर उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते जाकर महल और फिर मॉडर्न बिल्कुल ही हौड़ा ब्रिज और फिर पाकीज़ा भी और अलग अलग स्कूल, बिमलदा की पिक्चरें, ऋषिदा की पिक्चरें, ऋषिकेश मुखर्जी के साथ आशीर्वाद वगैरह, ऐसा कैरियर स्पैन मैं समझता हूँ बहुत बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा जिंदगी में।
उनका काम देखा, क्योंकि मैं खुद हिंदुस्तानी पिक्चर ज़्यादा नहीं देखे थे लेकिन उनका काम देखा, इट वाज एज फ्लुएंट जैसे कि वेस्टर्न स्टाइल में जो वेस्टर्न आर्टिस्ट करते हैं, किस्मत और शिकारी और चल चल नौजवान।
दादा मुनी, आई हैव ट्रेमेंडस 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 रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर दादा मुनी। इनफैक्ट दादा मुनी गेव मी माय फर्स्ट ब्रेक इन द फिल्म्स, अ ब्रेक इन द रियल सेंस व्हिच पुट मी ऑन टू द मैप ऑफ द इंडियन सिनेमा।
जिस वक्त महल बन रहा था उस वक्त बॉम्बे टॉवर्स के पिक्चर भी बन रहे थे, ये भी दूसरे पिक्चर बन रहे थे, एक जिद्दी जिसमें मैं काम करने वाला था और इसमें चुगताई ने स्टोरी लिखी थी, शाहिद लतीफ ने लिखी थी, वो दोनों मिलकर लिख रहे थे। उस वक्त मैं बाई चांस मैं बाहर गया थूकने के लिए या सिगरेट फेंकने के लिए, देखा एक लड़का बैठा हुआ है गार्डन के कुंवारी के ऊपर, बड़ा खूबसूरत लड़का। मैं क्या भाई, बोले मिस्टर गंगोली मेरा नाम देवानंद है, मैं एक पिक्चर किया वो चली नहीं है, कैन यू गिव मी ए चांस यार। तो मैंने देखा लड़का खूबसूरत लगता है, मैंने कहा ठीक है तुम बैठो अभी चलाओ। मैं जाके उनको बोला कि भाई जो तुम मेरे को रोल दे रहे हो मैं ये रोल में उसको देना चाहता हूँ, किसको मैंने कहा बुलाता हूँ उसको, आए बुलाया भी चलाओ। वो देख के चला गया, ही वो कोई ध्यान था देख के चला गया। तो नहीं नहीं आपको जो देर रोल दिया वो कैसे करेगा, बोले कर लेगा तो आप कोशिश तो करो। अशोक साहब मेरे को अशोक साहब कहते, अशोक साहब वो ये आइडिया अच्छा नहीं है और इसमें चुकता है वो वेरी मच अगेंस्ट। मैंने कहा एक दिन शूट करके देखो, एक दिन शूट किया तो एक टेक एक शॉट का 8 टेक लिया देवानंद का। तो बोला आप देखिए जाके क्या कर रहा, मैं गया सेट के ऊपर तो 8 टेक शुरू किया तो मैंने कहा तुम उसको बता तो नहीं रहे हो क्या है, आगे पीछे बता दो भाई। मैंने कहा सुनो देव ये आगे है ये पीछे आप तुम करो, फट से कर दिया। मैंने कहा तो समझाओ तो सही तो कर दिया करे कर, एक टेक में हो गया तो वो लोग मान गए।
तुम इस तरह डर क्यों रही हो शालू, मैंने तो आज तक तुम्हें किसी बात के लिए टोका नहीं, अगर मुझे मालूम रहता कि तुम किसके साथ जा रही हो और कब लौटोगी तो मैं चिंता न करता। दरअसल बात ये विनय, शालू मेरी इकलौती बहन है और तुम तो जानते हो एक बार ये बेचारी धोखा खा चुकी है।
मुझ पर भरोसा रखिए भाई साहब, मैं उनमें से नहीं जो सगाई करके भाग जाते हैं। आप आशीर्वाद देंगे तो मैं हमेशा के लिए इनका हाथ थामने के लिए तैयार हूं।
उसके बाद بامبے ٹاکیز تو خیر بند ہی ہو گئی. بامبے ٹاکیز بند ہونے کے بعد ہماری پکچر شروع ہوئی فری لانسنگ. فری لانسنگ میں بہت کچھ کرنے لگا. فری لانسنگ میں کیا کیا, دیکھا کہ بہت سی چیزیں جو ہے میں کرتا نہیں تھا وہ اب کرنا پڑ رہا, اب خود اپنے ہاتھ پر آیا. وہاں پر لوگ جب بامبے ٹاکیز میں تھا تو لوگ ہم کو سجیسٹ کرتے تھے, یہاں کوئی سجیسٹ کرنے والا نہیں, خود کرنا پڑا. خود کرنے سے کئی چیزیں جو ہے میں امپروو کر گیا, اور سب سے زیادہ امپروو کیا میں نے سنگرام میں. اس وقت چوپڑا آئے, بی آر چوپڑا, وہ آئے بولے کہ میں ریفیوجی ہوں, میرا ایک پکچر کر دیجیے. میں نے کہا کون ڈائریکٹ کون کرے گا؟
میں نے کہا صاحب میں ڈائریکٹر. آپ ڈائریکٹر ہیں؟ بامبے سے یعنی لاہور سے ریفیوجی ہو کے آئے, کوئی آپ کا ایکسپیرینس ایز اے ڈائریکٹر یا ایز این اسسٹنٹ یا کچھ؟ میں نے کچھ نہیں. کہتا میری بڑی مصیبت ہے, اس وقت میری پوزیشن اس وقت بالکل ٹاپ کی, تو میں ایسے بالکل ایک ایسی آدمی کے ساتھ جس کو کہ کچھ پتہ نہیں ہے فلم کا اور ڈائریکشن کا علم ہی نہیں ہے, اس کے ساتھ میرا کرنا ذرا مشکل لگتا ہے. میں نے کہا میں مانتا ہوں آپ کی بات, میں آیا اسی واسطے سفارش سے آیا تھا کہ اگر آپ سن لیں تو کچھ بات نہیں ہے, بٹ اینی وے آپ کا میں یہ بات مانتا ہوں کہ آپ کیوں ایک نئے آدمی سے کام کریں گے جبکہ آپ اتنے بڑے اسٹار ہیں ٹوڈے. ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. رام جانے کیا ان کو دماغ میں ان کے آیا کہ ابھی تم کہاں جاؤ گے؟ یہاں سے گھر جاؤں گا اور کہاں جانا, میں برسوں میں رہتا ہوں. کہتا اگر تم کچھ نہیں کر رہے تو چلو میرے ساتھ بامبے ٹاکیز. میں حیران کیوں یہ کہہ رہا ہے, اور کہنے لگے کہ وہ جو تم بنا رہے ہو سٹوری اس کی اسکرپٹ ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس ہے مگر یہاں نہیں ہے, مگر مجھے یاد ہے اور میں ڈائلاگ کے ساتھ بول سکتا ہوں اگر آپ کو سننا ہو تو. کہتا بامبے ٹاکی چلتے ہوئے بات کریں. بامبے ٹاکی چلے گئے اور وہاں جا کر کے اپنے کمرے میں مجھے لے گئے. میں نے سٹوری سنائی. سٹوری جب سنی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم جس طرح سے سنائی ہے اسی طرح سے پیش کر سکتے ہو؟ میں نے کہا جی میں کیا کہہ سکتا ہوں, میرا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, میں تو صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آئی ول ٹرائی.
سب نے کہا کہ بھائی ریفیوجی چلو کرو. ریفیوجی کے لیے کیا پکچر, سٹوری کیا, سٹوری انہوں نے سنائی. سٹوری تھی وینڈیٹا میری کوریلی کی, انہوں نے انڈینائز کیا تھا اور میرے کو اچھی لگی کہانی. میں نے کہا بھائی میں کرتا ہوں تیرا, میں کرتا ہوں. اور وہ تصویر جو بنی اس میں ایک مزیدار بات ہوئی.
ہم نے ایک اس کا لاسٹ شاٹ لے رہا تھا, دن کا لمبا شاٹ تھا. یہ اپنے کمرے سے باہر نکلے, چھڑی تھی ان کے ہاتھ میں, بس جج کا رول کر رہے تھے. ان کی بیوی تھی کلدیپ کور, تو اپنے کتے کے ساتھ کھیل رہا تھا. یہ بیوی آ گئی اس کو, تو اس نے کہا کہ وفاداری سیکھنی ہو تو کتے سے سیکھ. تو بیوی کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ کے کتے سے لینا پڑے گا. ہنستا ہے, چل پڑتا ہے. بیوی پھر پیچھے آتی ہے, تمہاری ٹھائی ٹھیک نہیں ہے سر, اور تھوڑا اس قسم کے ڈائلاگ تھے چل رہے. اور وہ دور سے میں بیٹھا ہوا تھا ٹرالی کے اوپر, تو میں نے کہا اشوک صاحب جس طرح سے آپ بول رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے,
آپ اس طرح سے کیجیے. میں نے کہا تم کر کے دکھاؤ.
میں نے کہا دیکھو جی میں ایکٹر تو ہو نہیں, مگر جو میرے کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈائلاگ آج بول رہے ہیں اس کا اثر کہانی کے سیکنڈ ہاف میں آنا چاہیے, تو لہجہ وہ ہونا چاہیے. میں بول کے بتا دیتا ہوں اپنی طرف سے. میں نے بول کے بتایا.
میں نے سوچا کہ یہ دکھانا چاہ رہا سب کے سامنے کہ یہ میرا کنٹرول کرتا ہے. میں کہا ٹھیک ہے چلو تم جو بولتے ہو کر, میں دونوں طرف سے کروں گا, اپنے طرف سے کروں گا اور ایک تمہارے طرف سے کروں گا, جیسی آپ کی مرضی. کچھ کر تو نہیں سکتے تھے وہ.
جب اوکے ہو گیا تو پیک اپ کر رہے تھے ہم لوگ, تو یہ اشوک صاحب میرے پاس آئے. وہ کہتے ہیں بھی تیرا یہاں پر آج سنا ہے پہلا دن ہے شوٹنگ کا, تمہارا سارا یونٹ آیا ہوا ہے, تو ایڈیٹر ہے آیا ہوا؟ میں کہ جی ہاں وہ تو میرا بڑا دوست ہے.
میں نے کہا کتنے بجے تمہارا رشز آئے گا؟ میں آپ جب بولے میں نے صبح 8 بجے رشز چاہیے, میں دیکھوں گا. دونوں دیکھا میں نے, دیکھ کے میں نے صاف دیکھا کہ اس نے جو سجیسٹ کیا تھا وہ اچھا تھا, تو میں نے اس کو بلوایا. میں نے کہا چوپڑا کو بلاؤ. تو وہ آئے بالکل کپتے ہوئے, جیسے پرنسپل کے پاس لڑکے جاتے ہیں بلایا جاتا تھا اس تک کب تک وہ گایا. میں اس کو دیکھا میں کہ کیا نام ہے تمہارا؟ بلراج کچھ نام بولا یاد نہیں آ رہا. میں کہا تمہیں تمہارے فادر تمہیں کیا کہتے ہیں؟ کس طرح سے بولتے ہیں؟ پھر میں بھی تمہیں یہی کہوں گا شیک ہینڈ وتھ میں تمہارا ٹھیک تھا. ہاں آپ کو اچھا لگا تھا؟ میں نے کہا تمہارا ٹھیک تھا, اب تم جو بولو گے ویسے کروں گا.
میں نے پہلی فلم آپ کی دیکھی تھی اچھوت کنیا, اور پھر پتا نہیں کتنی فلم دیکھی, 50 فلمیں دیکھی ہوں گی. اس کے بعد جب اکٹھے کام مجھے میری ہمت نہیں تھی. چوپڑا سا نہیں نہیں جاؤ کریں گے وہ دو تو بتاؤ روز. اچھا اس روز میں وہ بتائیے
چوپڑا نے بولا تھا.
چوپڑا اشوک کمار جب نئے نئے آئے تھے جو میں کہہ رہا تھا اچھوت کنیا گنگن بندن, تو اس کے سارے گانے خود گاتے تھے. اور ایک فلم بنی تھی چل چل دے نوجوان, وہ لیرکس بھی انہوں نے لکھے تھے. اور اسی طرح ہماری ایک فلم تھی شوقین, ہم سب لوگوں نے کہا کہ آپ تو گانا گاتے تھے, گانا گائیے. تو میں گانا بھی گایا جو ریکارڈ بھی ہوا پنچم دا آر ڈی برمن کے میوزک ڈائریکشن میں.
اچھا بھائی کب ملتے ہو, کب جا رہے ہو؟ یہ گانے میں کوئی بہت تھوڑے لوگوں نے, جیسے جب بیچارے مر گئے جو راج کپور کے گانے دیتے تھے, کیا نام تھا, سائلنس, بہت سے گانے لکھتا تھا وہ. اس میں گانا اس نے لکھا تھا بندین میں ایک جگہ جگہ گانا لاسٹ میں دیتا ہے, تمہارے دل سے تمہارے دل کی کتاب سے میرا نام مٹا لو. کیا کیا لولی آئیڈیا ہے. ایسے ہے جو ہے نا اب ملتے کم ہیں, آئے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں.
من کی کتاب سے تم میرا نام ہی مٹا دینا, گن تو نہ تھا کوئی بھی اب گن میرے بھلا دینا. من کی کتاب سے تم میرا نام ہی مٹا دینا, گن تو نہ تھا کوئی بھی اب گن میرے بھلا دینا. مجھے آج کی بدا
اور جس نے مرتدم میرے نام خط لکھا تھا جو 17 سال بعد مجھے ملا ہے, اس میں میری بیٹی کا ذکر ہے. مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ یہاں ہے.
تو آپ اسے دیکھنے آئے ہیں؟
میں اسے لے جانے آیا.
اچھا تو آپ لے جانے آئے ہیں.
ہلو آپ ہوٹل
اس کے کہیں گے؟
ہم کو نہیں آتا.
لیکن آپ بول تو رہی ہیں.
او نو اٹس آل رانگ.
زیادہ غلط نہیں ہے, آپ مجھ سے ہندی میں بات کیا کیجیے.
But he's always been a great man. ہر چیز میں شطرنج بھی کھیلتے ہیں, الیکٹرانکس کے ساتھ گھومتے پھرتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. انسان کو کرنا چاہیے.
آپ سب تو جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت ہی گنی ڈاکٹر بھی تھے اور جو کہ سیلف ٹاٹ ہومیوپیتھ تھے, اور اتنی پربل تھی ان کی شکتی کہ آج بھی وہ کسی کو دیکھیں گے اور دیکھتے ہی وہ بتا دیں گے کہ تمہیں یہ روگ ہے اور اس کی یہ دوا کرنی چاہیے.
ایک عورت کو کینسر ہو گیا تھا پیٹ کا, اس کو میں نے دوا دینا شروع کیا تھا یہاں ریسنٹلی, ناٹ ویری ریسنٹلی, 8 سال پہلے دوا دینا شروع کیا تھا. وہ ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہو جانے کے بعد ہاسپٹل والے بولے ارے آپ یہ سب کرتے کیا؟ میں نے کہا میرے ہومیوپیتھ میں کرتا ہوں. وہ آئی بولے کہ میں اب کام تو نہیں کروں گا, بڑھیا ہو گئی تھی, بولے اباؤٹ 70 ایئرس, میں یہاں میں نرسنگ کروں گی. نرسنگ کرتے کرتے ساتویں دن کیا ہوا, اس کو پھر سے درد ہوا اور بستر پر سو گئی, شام کو مر گئی. میں تو بڑا افسوس ہوا, میں نے کہا یہ کیا ہوا, اتنے دیر سے ٹریٹ کیا, اتنے دیر زندہ رہی, میں کو سمجھ میں نہیں آیا. اس لیے میں نے لکھا لندن میں, کیونکہ ایسا ایسا ہوا تو انہوں نے فون کیا ہم کو, وہ کیا ہوا تھا. میں نے کہا ایسا ایسا ٹریٹ کیا, وہ مر گئی. بولے تو دیکھو بھائی ایک چیز وشواس کرو, بھگوان پر وشواس کرو, بھگوان کو تھا کسے لے جائے. तो मैंने कहा अगर भगवान का यही है तब लोगों को ट्रीट क्यों करते हैं, अगर भगवान की अगर ये इरादा है कि उसे मारना है तो हम ट्रीट क्यों करते। बोले ये तुम्हारे कहने की बात नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है ट्रीट करना, फिर भगवान जो करे वो करे।
दादा मुनि कोई एक जनरेशन के साथ तो रहे नहीं, उनकी खासियत और उनकी खूबियत यही रही है कि वो जनरेशन बदलते गए लेकिन दादा मुनि वही के वहीं रहे और उन्हीं के साथ साथ वो चलते आए। तो वो शुरू शुरू में दिलीप साहब के साथ जो एक जमाना था उसमें आए और उनका एक अलग ही एक कैरेक्टर था, एक उनका अलग ही एक माहौल था। और हर जनरेशन जैसे जैसे जनरेशन बदलता गया लेकिन दादा मुनि जो थे वो उसके साथ साथ चलते आए। ऐसा कहना कि दादा मुनि का कोई एक ट्रेंड रहा या एक कोई जनरेशन रहा ये सही नहीं होगा, क्योंकि शायद वही एक कलाकार हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जो आज के कलाकारों को लेकर के और जितने पुराने के कलाकार हैं सबके साथ उन्होंने काम किया। इतनी महान हस्ती, इतने महान कलाकार, लेकिन उनका जो रवैया था वो बहुत ही मिलनसार, बहुत ही सादगी थी उनके उनके व्यवहार में। चाहे छोटे से छोटा कलाकार हो, चाहे बड़े से बड़ा कलाकार हो, वो हमेशा उनको बहुत ही इज्जत देते, कभी अपना जो बड़ापन था उनका वो कभी इजहार नहीं करते उनके ऊपर। और अपने उनका व्यवहार जो था वो अपनी उम्र से हमेशा कम रहा है, वो एक बच्चे की तरह घुल मिल करके सबसे बात करते, मिलते जुलते।
अमर सो
ना,
अमर रू
पा,
सबसे अच्छी
मा,
सबसे बुरी
मा,
सबसे मोटी
मा,
सबसे दुबली
मा,
सबसे पा
जी मा।
एक जिज्ञासा जो रहती है बच्चे की जानने की कि ये शर्ट का बटन ऐसा क्यों है, ये कलम आपने क्यों लगा रखा है, इस तितली का रंग यूं क्यों होता है, इस तरह की चीजें जो थी वो हमेशा दादा मुनि पूछते जाते थे। बड़ा ही एक एक्टिव माइंड उनका, बच्चों की तरह।